कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असीम कृपा से अभी हम एक और दिव्य पेड़ के पास आए हैं। ये सब साफ रखना है, बंदर दिख जाएगा। तो ये और एक दिव्य वृक्ष है, कदम का पेड़ है। बहुत अद्भुत पेड़ कदम का पेड़ है। ब्रज में आपको कई प्रकार के कदम के पेड़ मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य कदम का पेड़ है। व्रत जो है ऐसे महान और दिव्य पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ये वही पेड़ है जिस पर चढ़कर भगवान ने जमुना में छलांग लगाई थी कालिया को दमन करने के लिए। कालिया दमन करने के लिए भगवान ने इसी पेड़ पर अपने दिव्य चरण कमल रखकर यहां से छलांग लगाई थी, जंप मारा था जमुना पे। सब लोग मंदिर से सावधान रहिए, और जो लोग चश्मा पहने हुए हैं वो चश्मा को उतार दीजिए, क्योंकि हो सकता है बंदर आपका चश्मा छीन ले। Those who are wearing spectacles, please keep them in the pocket। तो कहानी इसकी ऐसी है, ये जमुना किनारा है। देखो अभी आप यहाँ पर 25 साल पहले आते तो आपको जमुना जी यहाँ बहुत पास दिखाई पड़ता, लेकिन कहते हैं कि 50 साल पहले जमुना जी दिशा बदल गई उसकी, और दिशा बदल के दूर दूर चली गई। इसलिए घाट, ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप्स जहां बैठे आप लोग, ये जमुना जी का घाट है। इसमें से उतर के हम जमुना जी में जाके स्नान करते थे, ऐसे उतर उतर कपड़े रखे वहां पर, उतर के यहां पर जल हुआ करता था। अभी जमुना जी का प्रवाह बदल गया है, इसलिए घाट वैसे रह गया, जमुना जी कहीं और चली गई। जमुना जी का पात्र भी बड़ा विशाल था, वो भी छोटा छोटा होते जा रहे। तो उस समय जब भगवान यहां पर लीला कर रहे थे, तो भगवान ने बहुत सारा लीला जो है वो जमुना किनारे पे किया है। जमुना किनारे में गेंद खेला है, जमुना किनारे में छलांग लगाया है जमुना जी ने, और गेंद खेल के उसमें जल विहार किया है, एक दूसरे पर पानी छिड़का है, राजा रानी के साथ नौका विहार किया है। जमुना जी बड़ी दिव्य है, जमुना जी सूर्य की पुत्री है। सूर्य की शादी जो है वो उषा देवी से हुई, सूर्य देव की शादी उषा देवी से हुई। और जब पहली बार उनका संबंध हुआ तो सूर्य का दिव्य प्रकाश देखकर उषा देवी डर गई। तो वो संबंध जब हुआ तो उसके रूप उसके पल में सूर्य देव ने कहा कि क्योंकि आप डर गई थी, आपको ऐसा पुत्र होगा जिससे सब लोग डरेंगे। ऐसा कौन है जो सब लोग डरते हैं बताओ? यमराज, जिसका नाम है यमराज, गॉड ऑफ डेथ। यमराज जो है उन्होंने बताया कि क्योंकि आप डर गई थी इसलिए इस पुत्र से सब डरेंगे। तो उषा देवी बहुत दुखी हो गई बेचारी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अगले बार जो संबंध हुआ थोड़े प्रेम से अपने पति की सेवा की उसने, तो उस बार उस कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या का। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये कन्या नदी के रूप की होगी, और इसके नदी में जल में जो स्नान करेगा वो बड़े भैया के डर से मुक्त हो जाएगा। वरिड, वो बहुत चिंतित थी कैसे होगा। तो जमुना जी का क्या महात्म्य है, जमुना जी में स्नान करने से यमराज का दर्शन नहीं होता, और यमराज का दर्शन तब होता है जब हमारे पाप पुण्य हमको दोबारा शरीर प्राप्त करने के लिए मजबूर करना होता है ना, उस समय यमराज का दर्शन करना पड़ता है। यमराज इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, उनका दर्शन करके उनका दंड स्वीकार करके आगे जाना पड़ता है। लेकिन जो जमुना जी में स्नान करता है प्रेम से, भक्ति से, शरीर धोने के लिए साबुन लगा के नहीं, आत्मा के लिए जो स्नान करता है वो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेता, यमराज का दर्शन उसको नहीं करना पड़ता है। जमुना देवी का ऐसा महत्व है कि ब्रज में जमुना देवी पाप और पुण्य दोनों नष्ट करती है और साथ साथ कृष्ण की प्रेम और भक्ति भी देती है। ये जमुना जी का महत्व है। जमुना जी का महत्व नहीं, बहुत दूर है यहाँ से। तो मन से आप सब लोग जमुना जी को हाथ जोड़ के वंदन करना, सब लोग मन से जमुना जी को प्रणाम करना, तो जमुना जी भगवान का प्रेम देने वाली है। और जमुना जी भगवान की पांचवी पत्नी भी है। जब अर्जुन खांडव प्रस्थ को जलाने के लिए कृष्ण को लेकर गए थे तो खांडव वन को उन्होंने जला दिया हुआ, और बाद में थककर वो बैठे थे, भगवान ने कहा अर्जुन को जाओ जल लेकर आओ, तो जमुना जी वहां पर बह रही थी जमुना किनारे, तो जल लेने गए तो देखा कि एक सुंदर युवती वहां पर अच्छा वस्त्र पहनकर घूम रही है इधर उधर। तो अकेली जगह पर एक सुंदर लड़की घूम रही है तो कृष्ण भगवान क्यों घूम रही है, कहां से आई है, किसकी बेटी है, ऐसा होता है मन में, एकदम जंगल में अकेले में कोई नहीं है और एक सुंदर कर लड़की घूम रही है, तो लगेगा ना कौन है ये लड़की। तो अर्जुन ने उसको पूछा कि आप कौन हो, इतने एकांत जगह में अकेले क्यों घूम रही हो, क्या आप किसी पति की खोज में हो। जनरली जो अनमैरिड गर्ल्स होते हैं डिजायर टू गेट मैरिड, तो मन्नत मांगते हैं, पेड़ को दोरी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपको पति की खोज में है क्या। तो वो सुंदर युवती कहती है कि मैं यमुना देवी हूं और मेरे ही जल में अंदर बैठकर मैं तपस्या कर रही हूं कि मुझे विष्णु ही, केवल विष्णु मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। डिजायरिंग टू हैव लॉर्ड विष्णु एज माई हस्बैंड, आई एम डूइंग तपस्या अंडर माई ओन वॉटर्स। तो फिर अर्जुन ने जाकर भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे कन्या बोल रही है, तो भगवान जैसे ही सुनते हैं झट से उठते हैं तो जाके जमुना जी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान की 8 पटरानियां हैं, उसमें से प्रमुख रुक्मिणी देवी है, नंबर 2 सत्य मामा है, तो 5 नंबर की पत्नी जो है वो जमुना देवी है। लेकिन वो एक ऐसी एक ही पत्नी है जो ब्रज में रहती है, बाकी सब पत्नियां द्वारका में रहती थी उनके साथ, और ये नदी के रूप में बहती है यहाँ पर सब लोगों का उद्धार करने के लिए, सबको प्रेम भक्ति देने के लिए। जमुना जी का रज का स्पर्श, जमुना जी का जल का स्पर्श, जमुना जी का स्मरण, जमुना जी का दर्शन सब पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि चैतन्य महाप्रभु यहां से आगे जाएंगे, जमुना किनारा ही है पूरा आगे जाके, तो एक इमली तला नाम की जगह है, इमली तला यानी कि इमली का पेड़, उसका तला मतलब नीचे की जगह, पेड़ का तला मतलब पेड़ के नीचे बैठक जो होती है। तो इमली तला पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इमली तला में जमुना जी को देखते हुए उन्होंने भजन किया था। ऐसा भजन किया था कि चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो गौर वर्ण के थे, राधा रानी ने उनका शरीर जो है अपने वर्ण से ढक लिया था, सांवले रंग के भगवान को उन्होंने गौर वर्ण कर दिया था। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु वहां पर नीले हुआ करते थे, यानी कि कृष्णमय हुआ करते थे। जब ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं हरे कृष्णा लंच में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रात को नींद अच्छा नहीं आया, बस में बहुत तकलीफ हो गया, ऐसे जब से हम लोग कृष्णमय नहीं बनते। कृष्णमय बनने के लिए एकाग्र होना पड़ता है, ध्यान से तन मन आत्मा चित्त बुद्धि लगाकर एकाग्र होकर भगवान को पुकारना होता है। वैसे महापुरुष चैतन्य पुकारते थे, इसलिए वो गौर वर्ण के थे, वो सांवले वर्ण के हुए, और जब करते हुए जमुना जी को निहारते थे वो बड़े प्रेम से। जमुना जी भगवान ने क्या क्या लीला किया उसको याद करते थे। यहां पर क्या हुआ, बहुत कथा है, छोटी छोटी कथाएं में भी टाइम बहुत कम है, तो कथा ये है कि एक सौवरी मुनि थे, वो जमुना जी के जल में तपस्या करते थे, तो गरुड़ जी वहां आकर मछली पकड़ते थे और खाते थे, तो सौवरी मुनि को अच्छा लगा नहीं, उन्होंने कहा कि आप हमारे जल में आकर हमारे जल में जो प्राणी विहार कर रहे हैं उनको मार के खाते हो, तो उनका वाद विवाद हुआ, गरुड़ जी को उन्होंने शाप दे दिया, गरुड़ को शाप दे दिया कि तुम वापस अगर इस जल में आओगे तो मर जाओगे। तो फिर गरुड़ जी ने सौभ्र मुनि का आदेश को पालन करते हुए जमुना जी में आना बंद कर दिया, इस तरह आना बंद कर दिया। तो ऐसे आगे कथा आती है कि यमुना जी सॉरी कालिया था जो नाग था उसका और गरुड़ जी का युद्ध हुआ, बहुत लंबी कथा है, छोटी कथा बता दें आपको। उसमें युद्ध हुआ तो कालिया और गरुड़ जी का बहुत जोरदार युद्ध हुआ, दोनों बहुत पावरफुल थे। कुछ देर बाद कालिया हारने लगा युद्ध में, तो भागने लगा, लेकिन उसको पता था कि इसको गरुड़ जी को सौभ्र मुनि का शाप है कि जमुना जी में वो नहीं आ सकता है। वे जानकर उसने जमुना जी का सहारा लिया और कालिया जो है जमुना जी के जल में आके बस गया। तो जब जमुना जी में गया तो वहां से भी गरुड़ चले गए, पर हमको तो यहां जाना नहीं, गरुड़ के भय से भी जमुना जी में आया। लेकिन वो बहुत विषारी था, बहुत विषैला था, इज वेरी पॉइजनस। उसका पॉइजन इतना तेज था कि जमुना जी का पूरा जल जो है वो पॉइजन से भर गया पूरा, और जमुना जी का जल विष से भरने के कारण जितने भी पेड़ थे, जितने पौधे थे, जितने भी जीव थे, जितने भी जंतु थे, जितने कीटक थे, सब मर गए। यहां तक कि वो जल में इतना विष था कि जल के ऊपर जो होता ना बाष्प, नमी नमी होती है, ह्यूमिडिटी, जल बाष्प बन के ऐसा होता आता ना, उसके ऊपर से पंछी भी घूम उड़ते उड़ते आया ना तो वो उसका स्पर्श हो के उस विष के प्रभाव से मरकर पानी में गिरता। पानी में नहीं, भूमि पर भी परिणाम हुआ, आकाश में भी उसका परिणाम हुआ। जमुना जी के ऊपर से पंछी भी उड़ता था तो वो मर के नीचे गिरता था, तो सब वृक्ष जो है सब खत्म हुए। और खेलते खेलते सब ग्वाल बाल यहां पर आए, उन्होंने प्यास लगी से जमुना जी का जल पिया, तो सब भगवान के मित्र जो थे सब मर गए, जमुना जी के किनारे मरकर गिर पड़े। और बलराम जी और कृष्ण आए, देखा तो क्या सारे सब दोस्त लोग जो हैं जमुना जी का विषारी पानी पी के खत्म हो गए। उनको समझ गया कि इसमें अंदर कालिया नाग है जिसके विष के प्रभाव से सब लोग मर गए। तो भगवान ने अपना जो ऐसा वस्त्र होता ना था वो तो पहन आपने पहना निकाल, ऐसा भगवान ने वस्त्र पहना था ना, ऐसा भगवान ने निकाला, कमर में बांध दिया, उसको गांठ लगा दिया पूरा, और ऐसा होता ना कुश्ती का ना, कुश्ती वाला था ना, वैसा इधर बांध दिया कमर में और ऐसा किया ऐसे खड़े होकर इस पेड़ पर ये सब किया और छलांग लगाया जमुना जी के अंदर। बलराम जी भी खड़े होकर देख रहे थे, छलांग लगाया जैसे सब डर गए, मतलब पहले तो सब मर गए थे, वो मरने की खबर सुन के बहुत ब्रजवासी आ गए, उनके माता पिता सब लोग, अरे हमारे बालक मर गए सब कालिया घाट के ऊपर, मतलब बाद में कालिया घाट बना यहाँ पर, तो सब नंद बाबा यशोदा माई सब लोग बड़े बूढ़े सब लोग आ गए, हमारे बेटे मर गए इसलिए। और बाद में क्या सुनते हैं कि कृष्ण भगवान ने छलांग लगा दी उसके अंदर, अभी वो भी जाएंगे। यशोदा रानी जो है ये सुनकर ही बेहोश हो गई और गिर गई। नंद बाबा उसको संभालने लगे, अरे यशोदा क्या हो गया, तो यशोदा माता जी बोले मैं फिर उसको बेहोश हो गई, फिर होश में आई, बोले मैं अभी जाऊंगा जी, मैं कूदती हूँ मेरे बालक को बचाने के लिए। तो उसको नंद बाबा खींच रहे, मत जाओ मत जाओ, बोले मुझे मेरा बालक अगर जा रहा है तो मैं भी जाती हूँ और मैं भी मर जाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर बहुत आतंक हो रहा है, यहाँ पर लोग परेशान है दुखी है, और भगवान ने छलांग लगा दी जमुना जी के अंदर, बहुत गहरी छलांग लगाई, तो पानी बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो कालिया बहुत गुस्से में आ गया, अरे मेरे जल में आने की हिम्मत किसकी हो रही है, छलांग लगा के ऐसे अपमान करके मेरा, तो वो भी ऐसा फन निकाल के बाहर आ गया। और फिर भगवान को उसने अपने क्या कहते हैं उसको कॉइल्स क्या होते हैं हिंदी में, अपने जो बॉडी है ना उसको गोल गोल करके भगवान को टाइट बांध दिया उसने, भगवान ने अपना शरीर को छोटा कर दिया, फिसल गया भगवान। फिर उनका युद्ध हुआ, फिर भगवान ने उसको मुक्का मारा, फिर उन्होंने पकड़ने की कोशिश किया, फिर जल में बहुत उथल पुथल होने लगी, सब जगह से जल यहाँ वहां होने लगा, जो यहां से काले अटैक कर रहे हैं, यहां से भगवान अटैक कर रहे हैं। और ये सब होने के बाद में कई बार भगवान को बांधने का प्रयास किया, भगवान फिसल के निकल गए और फिर कन्हैया जी उनके सर पर कूद जाते, दिख रहे हैं आप यहाँ पर होते हैं ना ऐसे, एंड में भगवान तुरंत जंप देते हैं उनके सर पे, उसके कई फन थे यहाँ पर, तो थोड़े से फन है, बहुत सारे फन थे, हर फन के अंदर बहुत भयंकर विष था, अपने विषैले फन से भगवान को बार बार डसने का प्रयास कर रहा था, भगवान उसको मुक्का मार रहे थे और उसका मुक्का मारते ही बहुत सारा विष बाहर निकल रहा था मुंह से उसके, और दोबारा बहुत त्रस्त होकर पीड़ित होकर कालिया जो है बार बार भगवान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर अंत में भगवान उसके सर पे कूद गए और बहुत सुंदर नृत्य करने लगे, इतना सुंदर नृत्य करने लगे कि आकाश में देवता लोग जमा हो गए, गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष ये सब जो देवता है वो सब म्यूजिक में एक्सपर्ट है, कुछ गंधर्व बजाने में एक्सपर्ट है वाद्य, कुछ गंधर्व जो है गाने में एक्सपर्ट है, कुछ नाचने में एक्सपर्ट है, कुछ सुर में एक्सपर्ट है, कुछ भजन संगीत में एक्सपर्ट है, ऐसे सारे कला वाले संगीत वाले देवता सब आकाश में एकत्र हो गए और सोचने लगे ये कौन से ताल में नाच रहे हैं, वो भगवान का ताल पकड़ नहीं पाए, उनकी इच्छा हुई कि भगवान का जो ताल है उसको हम म्यूजिक देंगे आकाश से, इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे भगवान कि अप्सरा भी नाचने लगी उनको देखकर, लेकिन उनके नाच को देखकर इतनी मोहित हो गई, उनकी जैसे नाच करने का कोशिश करने लगी उनके ताल में, लेकिन वो कर नहीं पाई, ये कौन सा डांस है बोल रही हूँ, ये हमारे लोग पे डांस नहीं अलग ही डांस है, उसको समझने का प्रयास किया उन्होंने लेकिन वो समझ नहीं पाई कि कौन से ताल में कौन से पदन्यास में वो नाच रहे हैं, वो समझ में नहीं आया, वाद्य बजाने वाले कोशिश कर रहे थे जब वो उनको म्यूजिक देंगे तो वाद्य को वो म्यूजिक नहीं दे पाए, उनको जो संगीतज्ञ थे वो सोच रहे थे कौन सा राग है ये कौन सा ताल में गा रहे हैं, तो राग को पकड़ नहीं पाए वो, इस तरह से भगवान नृत्य करने लगे एक एक फन से, इस फन से उस फन पे, इस फन पे उस फन पे, उनका जितने भी नाग के जितने भी फन थे हर फन पे वो पैर डालकर नाच करने लगे, उनके पैर का स्पर्श होते ही एक एक मुंह से अग्नि और विष निकलने लगा, लेकिन भगवान का चरण कमल तो कमल जैसा है ना, कोमल है एकदम, एकदम कोमल, गोपियां जो है ना घर में बैठकर रोती थी कि ये चरण कमल लेकर बिना जूता पहने ये हमारे कन्हैया जी जंगल में घूमते हैं, पत्थर पे कंकड़ में कांटों पर घूमते रहते हैं, कहीं लग गया कांटा तो कितना दर्द होगा उनके कोमल चरण कमल को, ये सोचते रोती थी घर पे, रोती थी वो जंगल में घूम रहे हैं रो रहे घर पे, उनकी याद करती कि इनके चरण कमल को अगर कुछ लग गया कांटा तो कितना दर्द होगा, तो काले को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए ना, काले कष्ट को होना चाहिए, इतने कमल जैसे मुलायम मक्खन जैसे मुलायम चरण कमल तुम्हारे सर पे गिर रहे हैं तो इतना अच्छा लगेगा ना आपको, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है वही कोमल चरण कमल जब कालिया के सर पर पड़ रहे ना तो वज्राघात हो रहा है उसके ऊपर लाइक थंडरबोल्ट, एक साथ में कोमल भी है एक साथ में वज्राघात भी हो रहा है, वज्राघात होने से इतना दर्द हो रहा है उसको, उसके एक एक चरण कमल गिरने से इतना सारा विष बाहर गिर रहा है उसके मुंह से, अग्नि निकल रही है पानी के अंदर, और कुछ देर बाद में खून निकलने लगा उसके, क्योंकि तो पहले अग्नि निकला और फिर पॉइजन निकला और फिर खून निकलने लगा, विष समाप्त हो गया ना, खराब विष भगवान ने मार मार कर उसको पैर से उसका विष पूरा निकाल लिया, फिर वो खून जो है वो पानी के ऊपर आया, लाल पानी हो गया, विश्वदा भाई देख रहे तो दोबारा बेहोश हो गई, अरे हो सकता है मेरा बालक बालक का खून होगा, फिर नाग को लेकर भगवान बाहर आ गए, जल के ऊपर आ गए और जल के ऊपर नृत्य करने लगे उनके सर के ऊपर, और ये करने से सारा विष जो है उसका निकल गया, जब सारा विष निकल गया तो एकदम शांत हो गया, उसका सारा द्वेष सारा क्रोध जो था वो उस विष की वजह से था, जब तक विष था उसके अंदर तब तक वो क्रोध द्वेष गुस्से वाला आदमी था नाग, तो इतना वो मलूल और इतना शक्तिहीन हो गया जैसे मरने के लिए आ गया, वो कभी शक्ति पूरा खत्म हो गया उसका, क्योंकि नाग का शक्ति उसके विष में होता है, सब विष निकल गया तो कहां शक्ति बचा उसका, जैसे हमारा शक्ति खून में होता है और खून बह गया तो हम लोग खत्म हो जाते, तो जैसे वो मरने लगा तो उसकी पत्नी है जो थी नाग पत्नी वो सब बाहर आ गई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे भगवान आप तो भगवान हो, शक्तिशाली हो, षड ऐश्वर्य से पूर्ण हो, और ये हमारे पति बहुत द्वेषी हैं, बहुत पापी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पति हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्लीज उनको माफ कर दीजिए, अभी उनका सब विष नष्ट हो गया है, अभी वो शुद्ध हो गए हैं आपके चरण कमल के स्पर्श से, अभी आप उनको माफ कर दीजिए, उसको मारना नहीं, आप बाकी राक्षसों का वध करते हैं, इनका वध करना। तो नाग पत्नियां भगवान की शुद्ध भक्ति, नाग पत्नियां भगवान की शुद्ध भक्ति, उनकी प्रेम भरी प्रार्थना और याचना सुनकर भगवान ने कालिया को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया और कालिया को आदेश दिया कि तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारे वजह से पूरा जो कालिया देह है, जो पौंड है, पूरा विषैला हो गया है, तुम यहां चले जाओ। तुमने कहा मैं चला जाऊंगा तो गरुड़ जी पकड़ेंगे मुझे और मार देंगे, तो कहते हैं भगवान की अभी आपको गरुड़ नहीं मारेंगे, क्योंकि अभी आपके सर पर मेरे चरणों का निशान हो गया है, तो मैंने नृत्य किया आपके चरण सर के ऊपर, आपके हर सर के ऊपर मेरे चरण के निशान है, और जैसे ही गरुड़ जी आपको देखेंगे और आपके सर के ऊपर मेरे चरणों का निशान देखेंगे तो आपको मारेंगे नहीं, आपको दंडवत प्रणाम करेंगे। डोंट वरी, भगवान के चरण कमल जो है ना वो निर्भरता का आसरा है, भगवान के चरण कमल प्राप्त करते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है। कालिया को गरुड़ के द्वारा भय था, लेकिन भगवान के चरण चिन्ह की वजह से गरुड़ के मैं मतलब मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। बुझीनु प्रभु तोमर चरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खाना, एको ना बुझीनु प्रभु तोमर चरण अशोक कैसे हैं अशोक यानी शोक से मुक्त करने वाले और अभय यानी भय से मुक्त करने वाले और अमृत यानी हमको मृत्यु से मुक्त कराने वाले। अशोक अभय अमृत, अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान, ये जो गुण है भगवान के चरणों के, ये इसकी खान है भगवान के चरण, इज अ माइंड ऑफ ऑल दिस वंडरफुल क्वालिटीज which will free you from miseries, sorrow, which will free you from all fear and will give you eternal life of love and devotion. ये भगवान के चरणों का सहारा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण वो एक ही एक में स्थान है जहां पर कोई भी भय रहता नहीं है, भय के लिए वहां कोई स्थान नहीं, no fear exists at the lotus feet of the Lord. इसलिए भक्तों को भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए और कोई चीजों का सहारा इस दुनिया में नहीं बचाएगा। सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। जिस जिसका सहारा हम लेते हैं वो सब लोगों को डूबते हुए हम देखते हैं, तो डूबते हुए लोगों का सहारा लेके फायदा क्या है? आपको सहारा उसका लेना चाहिए जो डूबता नहीं है। आप नदी में डूब रहे हो, 10-5 लोग और डूब रहे हो, तो एक इसका हाथ पकड़ता है, वो उसका हाथ पकड़ता है, इसका हाथ पकड़ता है, इस हाथ पकड़ते वो अंदर चला जाता है, तो आपका हाथ पकड़ के वो अंदर आप चलाते चले जाओगे। जिसका भी डूबने वाले का हाथ पकड़ोगे सब लोग नीचे चले जाएंगे, लेकिन कोई बोट पे होगा किसी बोट पे और वहां से आपको दोरी डालेगा, वो दोरी को आप पकड़ोगे तो आप बोट पर चले जाओगे, क्योंकि बोट पर जो आदमी खड़ा है वो डूब नहीं रहा है, वो बोट पर है और हम डूब रहे हैं। जब डूबने वाला आदमी जो बोट पर है उसका सहारा लेता है तब वो बच जाता है, लेकिन डूबने वाला आदमी डूबने वालों का सहारा लेता है तो सब मिलकर साथ में डूब जाते हैं। बहुत सिंपल फिलोसॉफी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं समझ रहे। इसलिए अगर बचना है तो जो बचे हुए हैं उनका सहारा लो, संत महात्मा जो होते हैं ना भगवान के भक्त, वो बचे हुए होते हैं, वो बोर्ड पर होते हैं, उनका हाथ पकड़ेंगे तो हम भी बच जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनियादारी के लोगों का हाथ पकड़ते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बहुत पावरफुल है, इनके बहुत कॉन्टेक्ट है, सोचते हैं कि ये हमको बचाएंगे। हम डॉक्टर हैं बोलेंगे हमारे पास बहुत डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हो गया ना हमारा डॉक्टर अवेलेबल है। किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी वाला अवेलेबल है। हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है। पेट का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। हर्निया हो गया, सर्जन भी अवेलेबल है। कैटरेक्ट हो गया, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल है। सोचते हम लोग हमारे पास सारा ब्रांच जितना है वो सब डॉक्टर अवेलेबल है, इसलिए हम मर नहीं सकते। लेकिन सारे डॉक्टर होते हुए भी पेशेंट मर जाता है, मरता है ना, क्या फायदा है उसका। ये सब टेम्पररी सहारे, कुछ दिन के, कुछ समय के लिए। हमको परमानेंट सहारा चाहिए जो हमको भव रोग से बचाएगा। वी आर लुकिंग फॉर डॉक्टर ऑफ भव रोग, डीबीआर, डॉक्टर इन भव रोग। वो अगर बनेंगे तो फिर दुनिया के जो रोग है ना, ये मृत्यु का रोग सबको लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का रोग, उससे बच जाएंगे। बाकी टेम्पररी रोग को बचेंगे, अच्छा है, दुनिया को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन उसका मूल कारण क्या है, ये शरीर, और ये शरीर को रोग लगता है। तो शरीर कैसे नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट होगा जब भगवान की भक्ति होगी, तब जाकर दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जो मरेगा नहीं। ये शरीर छोड़ देंगे, दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमको गुरु का और संतों का सहारा लेना है। इस पेड़ का भी एक रहस्य है, मैंने आपको बताया कथा में, आपने ध्यान नहीं दिया उसको, कि सब पेड़ मर गए थे, तो ये भी मर गया होगा ना उससे, नहीं, ये एक ही पेड़ जिंदा था। इसका भी कारण था, जो समुद्र का मंथन हुआ ना, तो उसमें से अमृत निकला, तो राक्षस लोग पहले लेके भाग गए उसको, फिर युद्ध हुआ, फिर राक्षस लोगों की तरफ से देवताओं ने उसको अपनी तरफ लिया और गरुड़ जी के हाथ में दिया। कैसे दिया, मोहिनी मूर्ति आई, भगवान का अवतार, भगवान एक सुंदर औरत बन के आई। कितने सुंदर होगी मोहिनी, स्वयं भगवान जब औरत बन के आएंगे तो कितना सुंदर रहेगी वो, सब राक्षस लोग मोहित हो गए उसको देख, और मोहित होकर उसके हाथ में पकड़ा दिया उन्होंने, लो आप बहुत विशेष हो, भगवान मोस्ट है, और हम लोग सब आपका ही सहारा लेते हैं, और जे जिसके लिए देवता लोग युद्ध कर रहे हैं वो बिना युद्ध के हम आपको ये कलश जो है अमृत का है आपके हाथ। ऐसे होता है अट्रैक्शन, उसको देखे सब इतने पागल हो गए देख के, उसके हाथ में पकड़ा दिया तुरंत मोहिनी ने, उसको गरुड़ जी के हाथ में पकड़ा दिया, और फिर राक्षसों को देना, राक्षसों को नहीं दिया, देवताओं को दिया अमृत। तो राहु जो है ना, राहु वो देखा कह रहे ये तो चीटिंग हो रहा है, स्वयं भगवान औरत बन के आए हैं, सब राक्षस लोग पागल हो गए हैं, और इनको चीटिंग करके देवताओं को अमृत पिला रहे। तो वो भी जाके देवता बन के बैठ गया उधर जाकर लाइन में, और सबके मुंह में भगवान मोहिनी के रूप में अमृत डाल रहे, सबके मुंह में डाल रहे थे इसे डायरेक्टली। उसने भी आ किया तो उसके मुंह में अमृत डाला गया, लेकिन पता चला कि ये राक्षस है, तो भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप के अंदर भी चक्र निकाला और गर्दन काट दिया उसका। लेकिन तब तक गर्दन तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए उसका शरीर मर गया, लेकिन गर्दन तक और सारा इनाम वो जिंदा रह गया, अमर हो गया। तो राहु जो है उसका शरीर नहीं है, खाली गर्दन और सारे उसका, फिर भी वो बड़े बड़े काम करते रहते। सोचो आप जरा, राहु की वक्र दृष्टि आती है ना, बहुत गड़बड़ होता है लाइफ में, बहुत गड़बड़ होता है, राहु दशा के अंदर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब कृष्ण का सहारा लेता है उसको राहु भी कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो गरुड़ जी वो अमृत लेकर जब उड़ रहे थे तो कुछ जगह बूंदी गिरी उसकी, कुछ उज्जैन में गिरी, कुछ इलाहाबाद में गिरी, कुछ नासिक में गिरी, और कहां गिरी, हाँ नहीं, और उज्जैन, हरिद्वार, एक हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद, प्रयाग, चार जगह बूंदी गिरी, तो वहां पर कुंभ मेला लगता है। लेकिन एक पांचवी जगह है, उसके पहले उस जगह पे गिरा था, वो है ये पेड़, क्योंकि उड़ते हुए कलश लेकर जब जा रहे थे गरुड़ जी, तो कुछ देर इस पेड़ पर बैठकर गरुड़ ने विश्राम किया और अपने हाथ से कुछ बूंद निकालकर इस पर डाल दी, क्योंकि वो गरुड़ चाहते थे कि मेरे भगवान द्वापर में आएंगे और यहाँ पर लीला करेंगे, कालिया को दमन करेंगे, तो उस समय इस पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, इसलिए पेड़ को उन्होंने अमृत डालकर अमर बना दिया। ये उसका एक कारण है कि वो जीवित थे। दूसरा कारण ये है कि वो पेड़ भी मर गया था, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण कमल उसको लगे वो दोबारा जीवित हो गया। ऐसा सुंदर वृक्ष देखो, उसके आप प्रणाम करो, दिल के सिद्ध वृक्ष है, उसका आशीर्वाद दो। और क्या मांगोगे यहाँ पर आप, क्या मांगना चाहिए कि हमें द्वेष से मुक्त करो। कालिया दास जो था वो द्वेष का प्रतीक था, ही वॉज एम्ब्लेम ऑफ एनवी। तो भगवान ने उसको मारा नहीं, कारण क्या था उसका, क्योंकि उसकी पत्नियों ने विनती किया इसलिए बच गया वो। तो कभी कभी पत्नी पति को बचा देती है, लेकिन पत्नी का शुद्ध भक्त होगी और पति पापी होगा, तो पत्नी अगर पति के लिए प्रार्थना करेगी तो पति अपने पापी होने पर भी बच सकता है। और हमारे लिए मैसेज क्या है कि जब तक भगवान के भक्त हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक हम बच नहीं सकते। इसलिए भगवान के भक्तों से दोस्ती कर लो, क्योंकि जब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना जो आपके लिए की गई है वो भगवान सुनेंगे, और आप जब करेंगे उसे भी जल्दी सुनेंगे। प्रार्थना का रहस्य क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए भगवान सुनते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो बहुत जल्दी भगवान सुनते हैं। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखो, ताकि दूसरे आपके लिए करेंगे, तो दोनों का प्रार्थना जल्दी सुना जाएगा। इंस्टेड ऑफ मी प्रेइंग फॉर माइसेल्फ एंड यू प्रेइंग फॉर योरसेल्फ, यू प्रे फॉर मी आई प्रे फॉर यू, बोथ द प्रेयर्स आर विल बी हर्ड वेरी फास्ट। इसलिए भक्ति भी एक साइंस है, वेरी इंटेलिजेंट साइंस, यू हैव लर्न द साइंस। हमारी प्रार्थना को वहां पहुंचाना है ना, तो मैं कोशिश करूंगा तो थोड़ा स्लो पहुंचेगी, आप करेंगे मेरे लिए तो जल्दी पहुंचेगी, और इन रिटर्न आई विल प्रे फॉर यू, और आपके लिए प्रार्थना जो है वो जल्दी पहुंचेगी, दोनों का हित साध्य हो जाता है। क्योंकि नाग पत्नियों ने पति के लिए गिड़गिड़ा कर करोड़ों का प्रार्थना किया, इसलिए मारने के बदले में कालिया को भगवान ने माफ कर दिया, और कालिया फिर कहां गया पता है, फिजी आइलैंड में चला गया। वर्ल्ड के अंदर एक देश है आइलैंड फिजी आइलैंड, वहां पर आज भी कालिया का मंदिर है, और वो कालिया राक्षस नहीं है, वो भक्त बना हुआ कालिया है। तो यहां से जब भगवान के चरण कमल की कृपा उसको प्राप्त हो गई, वो अपने विष से मुक्त हो गया, तो वो शुद्ध भक्त हो गया, स्वयं संत बन गया। तो वो संत कालिया का जो है उसका जो मंदिर अभी फिजी आइलैंड में है, और वहां पर उसकी पूजा होती है। तो ये बहुत रहस्यमय बातें, सब लोग इस पेड़ के पास जाकर प्रार्थना कीजिए, इसको भगवान का चरण स्पर्श हुआ है और भगवान ने इसको चढ़ कर छलांग लगाई है, कालिया का मर्दन किया है, आप लोग प्रार्थना करो भगवान से हमको भी आप द्वेष से मुक्त करो, क्योंकि जब तक द्वेष है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमने सबने भगवान से द्वेष किया है, इसलिए हम लोग यहां पर आए उनको छोड़कर। जब इस द्वेष को छोड़ देंगे तो फिर दोबारा उनके साथ जुड़ जाएंगे। ये द्वेष जो है इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट बोलना यह है कि ये द्वेष के ही कारण हम भगवान से बिछड़ गए। वी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज ऑफ द एनवी दैट वी हैव। हम सब लोग खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान को प्राप्त है वो खुद प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान को मिल रहा है वो आपको मिलना चाहिए, ऐसे हम पत्थर खुद भगवान बनना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान से हम द्वेष करते हैं, उनका सारा आनंद हमको खुद के लिए लेना चाहते हैं, उसकी वजह से हमको वहां से निकाल दिया गया और इस दुनिया में भेजा गया। इसलिए आप सब लोग यहाँ प्रार्थना करो, ये जगह बहुत सुंदर जगह है, इस जगह में बहुत कृपा है, यहाँ जो प्रार्थना करता है वो जीवन में द्वेष से मुक्त हो जाएगा, भगवान फिर उसका कृपा करेंगे। जैसे कालिया विषैला था, विष से मुक्त हो गया, केवल विष से मुक्त नहीं हुआ वो सत्य बन गया, भगवान का संत बन गया वो। तो आप लोग भी प्रार्थना करो कि हमारे अंदर द्वेष का विष जो है उसको लात मार मार कर आप निकाल दो और आपको मुक्त कर दो, चाहे आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आपकी भक्ति करने से फिर जोरदार बन जाएंगे। प्रार्थना कीजिए। अभी हम यहाँ से इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर में जाएंगे, वर्ल्ड फेमस इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे। हरे
हीरो,
यहाँ पर आगे एक मंदिर है जिसका नाम है मदन मोहन मंदिर, लेकिन अभी उसकी कथा मैं आपको वहां बताऊंगा। लेकिन आप दर्शन कर लीजिए, लाल रंग के जो घुमट बने हुए हैं दो है, वो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। हरे कृष्णा, श्री जमुना मैया की जय।